लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओ, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है साइप्रस और ग्रीस में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। साइप्रस में अपनी प्रेरित यात्रा को समाप्त करते हुए आपके भव्य स्वागत, आतिथ्य और महानता के लिए आपके प्रति और साइप्रस के लोगों के प्रति मैं गहन कृतज्ञता को नवीकृत करता हूं। राष्ट्र की शांति और समृद्धि के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हुए मैं आप सभी के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद का आह्वान करता हूं। साइप्रस के राष्ट्रपति को प्रेषित इस तार संदेश के साथ साइप्रस और ग्रीस की 5 दिवसीय प्रेरित यात्रा के दूसरे चरण में सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्म गुरु संत पापा फ्रांसिस ने साइप्रस से विदा ली और ग्रीस की राजधानी एथेंस के लिए प्रस्थान किया। यूरोप में आप प्रवासियों के प्रति बढ़ती उदासीनता के मद्देनजर ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तीय बहुल देश साइप्रस और ग्रीस की 5 दिवसीय प्रेरित यात्रा को संत पापा फ्रांसिस ने काफी हद तक आप प्रवासियों और शरणार्थियों की दुर्दशा पर केंद्रित रखा है। शुक्रवार को साइप्रस में संत पापा फ्रांसिस ने आप प्रवासियों के प्रति पश्चिम देशों में प्रदर्शित उदासीनता की संस्कृति की कड़ी निंदा की तथा उन यूरोपीय राष्ट्रों से एकात्मता की अपील की जो अब तक संभावित शरणार्थियों को लेने से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने इस तथ्य के प्रति नाराजगी व्यक्त की कि पश्चिम की विकसित सभ्यताएं आप प्रवासियों को स्वीकार करने से इनकार करती हैं या उन्हें उनके देश वापस भेज देती हैं, जहां उनकी स्वतंत्रता को कुंठित किया जाता, उन्हें उत्पीड़ित किया जाता और गुलाम बना दिया जाता है। यूरोपीय संघ की पोलैंड बेलारूस सीमा पर व्याप्त आप्रवास संकट और लीबिया की सीमा पर बने शरणार्थियों के लिए आहातों पर यदि गौर किया जाए तो संत पापा फ्रांसिस की उत्कंठा को समझना कठिन नहीं होगा। संत पापा फ्रांसिस ने इन आहातों को नाजी और स्टालिन युग के नजरबंदी शिविरों के समान लागर कहकर पुकारा है। उन्होंने कहा, आज हमें आश्चर्य होता है कि अतीत में यह कैसे हुआ, लेकिन आज हमारे भाइयों और बहनों के साथ आसपास के तटों पर ऐसा ही हो रहा है। संत पापा ने कहा कि बहुत से कभी मुकाम तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि समुद्र के बीच में ही मर जाते हैं। उन्होंने कहा, वैश्विक उदासीनता एक गंभीर रोग है और इसके लिए कोई एंटीबायोटिक दवा नहीं है। हम इन त्रासदियों के अभ्यस्त न बने बल्कि इस बुराई के खिलाफ लड़ें। इसी बीच वैटिकन ने इस बात की पुष्टि की है कि कम 1 दर्जन शरण चाहने वालों को यूरोपीय देशों के साथ एकजुटता के संकेत रूप में साइप्रस से इटली स्थानांतरित किया जाएगा। परम धर्म पीठीय प्रेस द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि परिवारों और आप्रवासी लोगों के प्रति संत पापा की चिंता के संकेत रूप में साइप्रस की प्रेरित यात्रा आगामी सप्ताहों में लगभग 12 शरणार्थियों का स्वागत करने की मानवीय भावना के साथ जुड़ी होगी। इन आप्रवासियों का स्थानांतरण वैटिकन राज्य सचिवालय, इटली और साइप्रस के अधिकारियों तथा आप्रवासी एवं शरणार्थी संबंधी परम धर्म पीठीय विभाग और साथ ही रोम के संत इजिदियो समुदाय के सहयोग से संभव होगा। साइप्रस ने इस वर्ष आप्रवासियों और शरणार्थियों के आगमन में पिछले साल की तुलना में 38% की वृद्धि देखी है, जिसके चलते उसने यूरोपीय संघ के कार्यकारी आयोग से शरण के दावों को संसाधित करने से रोकने का निवेदन किया है। साइप्रस में शरण मांगने वालों में से लगभग 80% आप्रवासी तुर्की अधिकृत उत्तरी साइप्रस के हैं। शुक्रवार संध्या संत पापा फ्रांसिस ने निकोसिया स्थित पवित्र क्रूस को समर्पित पल्ली के गिरजाघर में आप्रवासियों और शरणार्थियों के साथ एकतावर्धक प्रार्थना समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में वे आप्रवासी भी शामिल थे जिन्हें एकात्मता के संकेत रूप में साइप्रस से इटली लाया जा रहा है। संत पापा ने कहा, उदासीनता के प्रति हम उदासीन नहीं रह सकते, इसके समक्ष प्रभु हम सबके अंतःकरणों को जगाए।
संत पापा फ्रांसिस ने साइप्रस की अपनी प्रेरितिक यात्रा को प्रवासियों के साथ एक एकतावर्धक प्रार्थना सभा के साथ समाप्त किया। संत पापा ने कहा,
cari fratelli e sorelle, è una grande gioia trovarmi qui con voi e concludere la mia visita a Cipro con questo incontro di preghiera.
आपके साथ यहाँ आकर और इस प्रार्थना सभा के साथ अपनी साइप्रस यात्रा का समापन करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं महाधर्माध्यक्ष पिज्जा बाला और बेकारा राय एवं कारितास की सुश्री एलिजाबेथ को धन्यवाद देता हूँ। मैं साइप्रस में मौजूद विभिन्न ख्रिस्तीय समुदायों के प्रतिनिधियों को सस्नेह और कृतज्ञता के साथ अभिवादन करता हूँ। प्रार्थना सभा में कोंगो की मरियमी, श्रीलंका की थमारा, कैमरून के मैकोलिन्स और इराक के रोज ने अपनी कहानियों को साझा किया, अपनी पहचान की गवाही दी। अपनी यात्रा के दौरान उन्हें नफरत के घावों की पीड़ा सहनी पड़ी, साथ ही उन्होंने अपने सपनों को भी साझा किया। उन्हें सुनकर संत पापा फ्रांसिस ने कहा, हम ईश्वर के वचन की भविष्यवाणी शक्ति को बेहतर ढंग से समझते हैं, जो हमें बताते हैं आप अब अजनबी और विदेशी नहीं हैं, लेकिन आप संतों के साथ साथी नागरिक हैं और ईश्वर के घर के सदस्य भी हैं। संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि उनके साक्ष्य के माध्यम से ईश्वर अपने प्यार, न्याय, शांति के राज्य को अपने इन छोटे लोगों को प्रकट कर रहे हैं। संत पापा ने कहा कि इन प्रवासियों की कहानियां हमारे ख्रिस्तीय समुदायों के लिए दर्पण की तरह है, हमें याद दिलाती हैं कि हमें भी हमारी पहचान के बारे में पूछा जाएगा। उन्होंने हमें याद दिलाया कि नफरत ने हम ख्रिस्तियों के बीच संबंधों को भी जहरीला बना दिया है, कि हम संघर्ष से समन्वय की ओर यात्रा कर रहे हैं और ईश्वर हमारे सपनों के माध्यम से हमसे बातें करते हैं। ईश्वर हमें एक विभाजित दुनिया और विभाजित ख्रिस्तीय समुदायों से संतुष्ट नहीं होने के लिए कहते हैं, लेकिन अपने स्वयं के सपनों द्वारा बनाए गए इतिहास के माध्यम से यात्रा करने के लिए कहते हैं। मानवता का सपना विभाजन की दीवारों से मुक्त होना है, शत्रुता को समाप्त करना है, जहां अब कोई अजनबी नहीं है बल्कि सब सह नागरिक हैं। संत पापा फ्रांसिस ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि साइप्रस एक द्वीप, एक दर्दनाक विभाजन द्वारा चिन्हित, ईश्वर की कृपा द्वारा भाईचारे का एक कार्यशाला बन सकता है। ऐसा होने के लिए दो चीजें आवश्यक है, हर व्यक्ति की गरिमा की प्रभावी मान्यता और पिता ईश्वर के प्रति एक भरोसेमंद खुलापन। यदि ये दो चीजें हो सकती हैं, तो सपना दैनिक जीवन में साकार हो सकता है। नफरत से प्यार की ओर, संघर्ष से समन्वय की ओर जाने का ठोस कदम लिया जा सकता है। उन्होंने कहा, धीरज के साथ की गई यात्रा जो दिन प्रतिदिन हमें उस देश की ओर ले जाती है जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है, ऐसी भूमि जहां अगर लोग पूछते हैं आप कौन हैं, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपकी बहन हूँ। संत पापा फ्रांसिस ने अपने संबोधन का समापन प्रवासियों द्वारा अनुभव की गई पीड़ा के प्रति आधुनिक उदासीनता को दूर करने के लिए जोशीले निवेदन के साथ किया। उन्होंने इस तथ्य पर खेद व्यक्त किया कि हमें प्रतिदिन होने वाली त्रासदियों के बारे में पढ़ने की आदत सी हो गई है। संत पापा ने कहा,
pregare uno per l'altro e fare qualcosa, poi i fili spinati, no? Quelli lo vedo uno. Questa è una guerra dell'odio che divide un paese.
मुझे खेद है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। भोजन, सहायता, स्वतंत्रता और भाईचारे की तलाश करने वाले लोगों का सामना केवल कांटेदार तार से होता है। कृपया मुझे चीजों को वैसे ही बताने के लिए क्षमा करे जैसे वे हैं, लेकिन हम चुप नहीं रह सकते और उदासीनता की इस संस्कृति में दूसरी ओर देख नहीं सकते हैं। संत पापा ने कहा, प्रभु ऐसी चीजों के प्रति हम सभी की अंतरात्मा को जगाएं।
ग्रीस में संत पापा फ्रांसिस की 3 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा का मुख्य लक्ष्य कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तीय कलीसियाओं के बीच हाल में सुधरे संबंधों को मजबूत करना है। सन 2001 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की ग्रीस की प्रेरित यात्रा 1200 वर्षों बाद कैथलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष की प्रेरित यात्रा थी। संत पापा फ्रांसिस ने अंतरधार्मिक पहलों को द्रुत गति प्रदान कर कैथलिक तथा ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तीय कलीसियाओं के बीच सदियों से व्याप्त अविश्वास को सहयोग की ओर ले जाने का प्रयास किया है। सदियों के विभाजन पर खेद व्यक्त करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने ऑर्थोडॉक्स और अन्य धर्मों के नेताओं को आगामी अक्टूबर माह में जलवायु परिवर्तन संबंधी एक घोषणा पर हस्ताक्षर के लिए भी आमंत्रित किया है। कैथलिक और ऑर्थोडॉक्स कलीसियाओं के बीच सहयोग को अधिकाधिक सुदृढ़ करने वाले समर्थकों की दलील है कि संत पापा का नेक कृत्य मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में संकटग्रस्त ईसाई समुदायों की सहायता कर सकता है। ग्रीस में संत पापा की प्रेरित यात्रा के विषय में एथेंस विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र और कलीसियाई इतिहास के सहयोगी प्रोफेसर योहान्नेस पानाजियोतो पॉलुस ने संवाददाताओं से कहा, मुझे लगता है कि ग्रीस और साइप्रस में संत पापा की उपस्थिति सामान्य रिश्तों की वापसी का संकेत देती है, जैसा कि हमारे बीच में होना चाहिए, ताकि हम उस ओर बढ़ सकें जो सबसे महत्वपूर्ण है, और वह है ख्रिस्तीय जगत की एकता। ग्रीस में संत पापा फ्रांसिस राष्ट्र के लघु कैथलिक समुदाय की भेंट करेंगे तथा रविवार को लेस्बोस के एजियन सागर द्वीप पर लौटेंगे, जहां वे 5 वर्ष पूर्व एक नजरबंद शिविर में आप्रवासियों से मिलने गए थे। सोमवार को समाप्त होने वाली ग्रीस में संत पापा फ्रांसिस की 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कड़ी सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। केवल एथेंस में ही लगभग 4,000 अतिरिक्त पुलिस अधिकारियों की व्यवस्था है। आधिकारिक तौर पर यूनानी गणराज्य रूप में मान्यता प्राप्त ग्रीस दक्षिण पूर्वी यूरोप स्थित एक देश है। 2018 तक इसकी जनसंख्या लगभग 1,70,00,000 थी। बाल्कन के दक्षिणी सिरे पर स्थित ग्रीस यूरोप, एशिया और अफ्रीका के चौराहे पर बसा एक देश है। उत्तर पश्चिम में अल्बानिया, उत्तर में मकदूनिया और बुल्गारिया तथा उत्तर पूर्व में तुर्की की सीमाओं से ग्रीस संलग्न है। ग्रीक संविधान पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तीयता को राष्ट्र के प्रचलित विश्वास के रूप में मान्यता प्रदान करता है, जबकि सभी नागरिकों को धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अमरीकी राज्य विभाग के अनुसार अनुमानित 97% ग्रीक नागरिक खुद को पूर्वी ऑर्थोडॉक्स ख्रिस्तीय बताते हैं। कैथलिक धर्मानुयायियों की संख्या ग्रीस में लगभग 50,000 है। शनिवार को संत पापा फ्रांसिस ने एथेंस स्थित राष्ट्रपति भवन में ग्रीस के वरिष्ठ प्रशासनाधिकारियों, नागर समाज के प्रतिनिधियों और राजनयिक कोर के सदस्यों के साथ मुलाकात कर उन्हें संबोधित किया। इस अवसर पर ग्रीस के राष्ट्रपति ने संत पापा का अभिवादन करते हुए कहा, अन्यों के लिए आपकी अथक और निस्वार्थ भेंट, कमजोर और जरूरतमंदों के प्रति आपकी करुणा तथा दुर्भाग्यपूर्ण और आहत हुए लोगों के प्रति आपकी गहन सामाजिक संवेदनशीलता ही आपके अनमोल कार्यों की विशेषता है। आप समाजों के बीच साझाकरण और सुलह का पोषण करते तथा पुराने पूर्वाग्रहों और अतीत की सांस्कृतिक दीवारों को हटाते हैं।
संत पापा फ्रांसिस ने यूनान के राजनयिकों और सामाजिक अधिकारियों को संबोधित करते हुए विभिन्न मुद्दों, विशेषकर ईश्वर की खोज, जलवायु परिवर्तन, राजनीति में सहभागिता और प्रवासियों के लिए भ्रातृत्व के भाव की चर्चा की।
Vengo pellegrino in questi luoghi che sovrabbondano di spiritualità, di cultura e civiltà.
मैं एक तीर्थ यात्री की तरह आध्यात्मिकता, संस्कृति और सभ्यता के इस देश में उस खुशी की अनुभूति हेतु आया हूँ, जिसे कलिस्सा के महाधर्मचार्यों ने अनुभव किया और उसे ज्ञान की खुशी और सुंदरता के रूप में दूसरों के संग बांटा। संत पापा ने यूनान से मानवता के क्षितिज में हुए वृहद विस्तार के बारे में कहा कि यह हमें अपनी दृष्टि को ऊंचाई दिव्य ईश्वर की ओर उठाने का आह्वान करती है, क्योंकि पूर्ण मानव होने हेतु हम अपने से परे जाने हेतु बुलाए गए हैं। दुनिया की हजारों भौतिक क्षणभंगुर चीजों में फंसे आज हम स्वर्ग की चाह को भूल गए हैं। उन्होंने कहा, यहाँ से सुसमाचार की यात्रा की शुरुआत हुई, जो पूर्व और पश्चिम यूरोप, रोम और यरूशलेम के पवित्र स्थलों को जोड़ती है। विश्व में ईश्वर के प्रेमपूर्ण संदेश को प्रसारित करने हेतु यूनान में सुसमाचारों की संरचना हुई, जहां मानव के विवेक में यूनानी भाषा दिव्य विवेक में परिणत हो गया।
Ma in questa città lo sguardo oltre che verso l'alto viene sospinto anche verso l'altro.
यह शहर हमें केवल ऊपर की ओर देखने हेतु नहीं अपितु दुष्टों की ओर भी देखने में मदद करता है, जहां भूमध्य सागर के माध्यम हम दुष्टों के संग सेतु स्वरूप जुड़े हुए हैं। संत पापा ने लोकतंत्र में आए हरास की ओर राजनयिकों का ध्यान आकर्षित कराते हुए कहा कि आज लोकतंत्र में गिरावट आई है। लोकतंत्र में हमारी सहभागिता और भागीदारी की आवश्यकता है, जो हमसे मेहनत और धैर्य की मांग करती है। उन्होंने राजनीति में सहभागिता पर बल देते हुए कहा,
Perché la politica è cosa buona e tale deve essere nella pratica in quanto responsabilità somma del cittadino, in quanto arte del bene comune.
यह एक अच्छी चीज है, क्योंकि इसमें नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व और जन सामान्य लोगों की भलाई निहित है। उन्होंने कहा, इसके द्वारा हम अच्छाई को साझा करते हैं। इस संबंध में मैं इस विकल्प पर जोर देना चाहूँगा कि हमें समाज के सबसे कमजोर तबके को प्राथमिकता देना है। संत पापा ने कहा, आइए हम एक दूसरे की मदद करें, जिससे हम सबों को आगे बढ़ने में मदद कर सकें। अपने संबोधन में संत पापा ने जलवायु परिवर्तन, महामारी, वैश्विक बाजार और उससे भी बढ़कर दुनिया में फैली गरीबी के विभिन्न रूपों का भी जिक्र किया। ये सारी चीजें हमारे लिए चुनौतियां हैं, जो हमें मिलकर ठोस रूप में कार्य करने का निमंत्रण देती हैं। भूमध्य सागर के किनारे उर्वरक भूमि में लगे जैतून के पेड़ों का संदर्भ देते हुए संत पापा फ्रांसिस ने कहा,
L'albero di olivo può simboleggiare la volontà di contrastare la crisi climatica e le sue devastazioni.
जैतून के पेड़ हमारे लिए जलवायु परिवर्तन और इसकी तबाही से निपटने के लिए दृढ़ संकल्प प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि मेरी आशा है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई की हमारी प्रतिबद्धताएं महज दिखावा बनकर ना रहे, बल्कि उन्हें पूरी तरह और गंभीरता से लागू किया जाए, हमारा वचन कार्य में परिणत हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी पुरखों की आडंबरता का भुक्तभोगी ना बने। संत पापा ने महामारी को एक बड़ी त्रासदी के रूप में निरूपित करते हुए कहा कि इसके द्वारा हमने अपनी कमजोरियों को खोजा है, जो हमें दूसरों की सहायता के महत्व को बतलाती है। उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों से उपयुक्त हस्तक्षेप का आह्वान किया, जिससे सबसे संवेदनशील और बुजुर्गों को आवश्यक सहायता मिल सके, क्योंकि जीवन हमारे लिए एक अधिकार है। अपने संबोधन के अंत में संत पापा ने यीशु ख्रिस्त की आज्ञा पड़ोसी प्रेम का जिक्र करते हुए कहा, ख्रिस्तियों के रूप में क्रूस के नीचे हम सभी एक पिता के संतान हैं।
Tradizione cristiani e soprattutto i credenti in Cristo a coltivare la comunione a ogni livello.
विश्वासियों के रूप में हम हर स्तर पर एकता स्थापित करने ईश्वर के नाम में सबों का आलिंगन करुणा में करने हेतु बुलाए गए हैं। हम अपने निष्ठा में जीवन के द्वारा देश के सहायक बने।
और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से प्रसारण समाप्त हुआ। नमस्कार।